चैप्टर 7 पे, आज नौवां भाग है उसके, 9th पार्ट है। क्वेश्चन, प्रश्न है, हाउ कैन गॉड डू द वर्क विच कैन ओनली बी डन थ्रू सेंस ऑर्गन्स व्हेन ही इज डिवॉइड ऑफ देम। ईश्वर कैसे काम करता है, क्योंकि काम करने के लिए तो ऑर्गन्स की जरूरत पड़ता है, शरीर के अंग प्रत्यंग और सेंसेस, इनकी जरूरत पड़ती है। ईश्वर के पास तो ना कोई अंग है ना कोई शरीर है, तो फिर वो काम कैसे करता है, ये प्रश्न है। आंसर, श्वेताश्वेत उपनिषद का एक मंत्र कोट किया, अपाणी पादो चवनो ग्रहीता। वो पाणी कहते हैं हाथ को, पाद कहते हैं पैर को, आ मतलब नहीं नेगेटिव। उसके पास हाथ पैर नहीं है पर जवानो है, बहुत तेज गति से दूर जाने वाला है, ग्रहिता, और सब कुछ को वो ग्रास्प कर सकता है, पकड़ कर सकता है। पश्यत्य चक्षु सश्रो श्रुणोत्य कर्ण, उसकी आंखें नहीं है पर वो देखता है, उसके कान नहीं है पर वो सुनता है। सवेत्ति विश्वम न च तस्यास्ति वेत्ता, वो सारे संसार को जानता है पर उसको कोई जान नहीं पाता है। तमाहुरग्र्यम पुरुषम पुराणम, उस तत्व को लोग पुराण पुरुष कहते हैं। पुराण का मतलब होता है विच इज एंशियंट स्टिल न्यू, वो नया भी, वो पुराना है बहुत पर अभी भी नया है, मतलब जो बहुत पुराना है पर उसमें नयापन कभी खत्म नहीं होता है, एवरग्रीन। और अग्रियम, जब कुछ भी नहीं था सबसे पहले वही था। ये श्वेताश्वेत उपनिषद का तीसरे चैप्टर का 19वां मंत्र है, गॉड हैज नो हैंड्स बट ग्रास्प्स and molds all things by virtue of his omnipotence. He has no feet but transcends all in speed by virtue of his omnipotence. He has no eyes but sees all perfectly, no ears but hears all, no internal organ of thought like mind, intellect, but knows all. No one can know him, his limits has been eternally existing. He is the eternal supreme spirit that pervades all. इससे पहले भी आपने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था, अनेज अदेकम मनसो जवीयो, वो मूव नहीं करता, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, पर जो बहुत तेज मूवमेंट में चलते हैं उनसे भी पहले वो मिलता है। अनेज अदेकम मनसो जवीयो नैन देवाप्नु वन पूर्वम अर्षत, दुनिया में सबसे तेज गति में चलने वाला हमारा मन होता है, पर मन भी उसको नहीं पाता है, पर वो खुद नहीं चलता है। ये जो पैराडॉक्स है, ये जो कॉन्ट्रेडिक्शन है, ये आपको हमारे लिटरेचर में, खास करके स्पिरिचुअल लिटरेचर में बहुत ज्यादा मिलेंगे। इस तरह के जो कॉन्ट्रेडिक्शन को बताने वाले जो मंत्र होते हैं, जो थोड़ी बहुत तो भारतीय अध्यात्म प्रक्रिया को, जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझता, वो उसको ये बहुत उटपटांग लगेंगे। और इसीलिए जब भी वेस्टर्न लोगों ने इंडियन लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने सिवाय गड़बड़ी करने के कभी कोई ढंग का अर्थ ना समझा, ना किसी को समझा पाए। उसका कारण है कि हर व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं कि वो साइंस के बड़े बड़े डीप जो फॉर्मूलाज हैं, जो रूल्स हैं, उसको समझ सके। वो वही समझते हैं जो साइंस के फील्ड में जाते हैं, जिनका माइंड उस तरह का है, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को समझ में आता है। बाकी हम पढ़ लिख लेने से थोड़े ही होता है कि हर किसी को साइंस समझ में आता है, या किसी को अंग्रेजी आ जाने से, बट मैथ आ जाने से कि अच्छा बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, ऐसा थोड़े ही होता है। यही रूल सभी शास्त्रों में लागू होते हैं जी, आध्यात्मिकता में भी यही रूल लागू होता है। जो समझता है, जो डूबा हुआ है, वही समझता है कि उन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका भाव क्या है। केवल किसी को संस्कृत आ जाने से उसको शास्त्र समझ में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज, आप अंग्रेजी में कितना भी बड़े एक्सपर्ट हैं, साइंस तो छोड़िए, क्या हम इकोनॉमी का आप उठाएंगे तो आप समझ जाएंगे? अगर इकोनॉमी में आपका सब्जेक्ट ना हो, आपका उसमें कोई एंटर ना हो, तो आप समझ जाएंगे? मुश्किल है। इवन जो हल्की हल्की पॉलिटिकल साइंस भी है, जो बहुत डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, उसको भी समझने के लिए थोड़ी बहुत आपको पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए। ये नहीं कि आपको लैंग्वेज आ जाने से आ जाता है। तो यही प्रॉब्लम हुआ वेस्टर्न लोगों में और जो इंडियन मॉडर्न लोगों में भी, जिन्होंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की, पर कभी अंदर जाने की उनकी कोई ना टेंडेंसी थी ना कभी कोशिश की। उसके कारण हमारे शास्त्रों में जो भी उटपटांग इंटरप्रिटेशन आपको मिलता है, उसका मूल कारण यही है कि जो अधिकारी नहीं है, अधिकारी मतलब जिसमें वो योग्यता नहीं है उसको समझने के लिए, उसने उसमें हाथ डाला, उसमें उसको समझने की कोशिश की। ये जो कंट्राडिक्शन है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इवन साइंस में भी आप देखते हैं, ये लॉजिक है कि अगर ये गर्म है तो उसको आप ठंडा नहीं कह सकते, अगर ये ठंडा है तो आप इसको गर्म नहीं बोल सकते, दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। अगर लाइट है तो आप नहीं कह सकते कि इट्स ए डार्कनेस, अगर अंधेरा है तो आप नहीं कह सकते कि लाइट है, दो अपोजिट चीज साथ साथ नहीं चल सकते। ये लॉजिक के बुक में लिखा है और लॉजिकली यही सच माना जाता था तब तक जब तक साइंस डेवलप नहीं किया। जब 20th सेंचुरी में हमने साइंस में, फिजिक्स में बहुत ज्यादा आगे बढ़े, अबे हम समझ में आया कि नहीं, एक ही चीज में दो अपोजिट चीजें भी रह सकते हैं। जिसको आप रात कहते हो, इट्स नथिंग, इट्स ए डिग्री ऑफ लाइट। अगर लाइट की डिग्री कम हो जाए वो डार्कनेस है, या आप उल्टा कहो कि डार्कनेस की डिग्री कम हो जाए तो लाइट है। आपकी डिग्री कम हो जाए, बढ़ जाए, तो आप इसको ठंड कहते हो, गर्मी कहते हो। इट्स नॉट अपोजिट, कम और बहुत एक ही चीज का। फिर जब हमने थ्योरी ऑफ क्वांटम समझा, हमारे सामने आया, तब हमने समझा कि वस्तु जिसको आप कहते हो कि जिसमें मूवमेंट है, आप ये नहीं कह सकते हो कि वो स्टेडी है। जो वेव है, आप ये नहीं कह सकते हो कि वो एटम है। पर हमने क्वांटम थ्योरी में समझा कि दोनों एक ही जगह हो सकते हैं। जिसमें वेव है, जिसमें मूवमेंट है, उसमें भी स्टेडीनेस हो सकता है। तो जब आप कोई चीज डीपली जाते हैं, तभी आपको बहुत सारे जो ऊपरी ऊपरी तौर पर कंट्राडिक्टरी लगते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं, उसमें भी अपना लॉजिक छुपा हुआ है। इसी तरह ईश्वर की जो अबुझापन है, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, और ऋषि जब उसको रियलाइज करता है, उसको अपने अंदर अनुभव करता है, वो समझता है कि वो क्या है। पर उसको जब उसको एक्सप्रेस करना होता है, उसके लिए लैंग्वेज की हैंडीकैप्सी होती है, उसकी लैंग्वेज का लिमिटेशन होता है। तो मजबूरन वो ऐसे शब्दों को यूज करता है जो शब्द एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करते हैं, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है समझाने के लिए। अपाणि पादो, क्योंकि हम समझते हैं कि जिसके पैर होता है वही दौड़ता है, उसी में मूवमेंट होता है। अगर यहीं तक हमारा ज्ञान है तो फिर हवा में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आग में गति नहीं होनी चाहिए, एनर्जी में गति नहीं होनी चाहिए। तो जब हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, समझ में आया नहीं कि जरूरी नहीं कि पैर होना चाहिए या व्हील होना चाहिए हमेशा मूवमेंट करने के लिए। मूवमेंट के लिए तो बिना व्हील के, बिना पैर के भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, आपको समझ में आएगा कोई ग्रॉस फॉर्म होना जरूरी नहीं है। ईश्वर बिना पानीपाद के भी, हाथ पैर के भी काम कर सकता है, बिना आंखों के भी समझ सकता है, देख सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो ओमनीपोटेंसी है, ओमनीसिएंसी है, इसीलिए वो समझ सकता है. इन अदर वर्ड्स, द डिवॉइड ऑफ सेंसेस एंड माइंड, ही डज ऑल हिज वर्क बाय वर्च्यू ऑफ हिज ओमनीपोटेंस. जब आप कहते हैं सर्वशक्तिमत्ता है उसके अंदर, समग्र शक्ति उसके अंदर है, तो वो बिना हाथ पैर के भी बहुत कुछ काम कर सकता है. जैसे हवा बिना हाथ पैर के उड़ भी सकता है और सामानों को उठा भी सकता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट भी कर सकता है. आजकल तो आप टेक्निकली इतने एडवांस हो चुके हैं, आप क्रेन से भी सामान उठा के एक चीज, क्रेन कोई हाथ पैर थोड़े होता है. तो जब जैसे जैसे आपका नॉलेज डीप होता जाता है, जब बाहरी दुनिया के ज्ञान बढ़ता है, तो आपको समझ में आता है दुनिया कितना अलग टाइप का है जैसा दिखता है. इसी तरह जब आप अंदर की यात्रा करते हैं, तो आपको समझ में आता है अंदर कितना अलग है जो दिखता है. अगला प्रश्न है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेनी पर्सन से दैट ही इज वॉइड ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड एट्रीब्यूट्स, इज दिस ट्रू? बहुत सारे लोग मानते हैं कि ईश्वर निष्क्रिय है, उसमें अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, एंड वॉइड ऑफ एट्रीब्यूट्स, निर्गुण है, उसमें किसी भी तरह का कोई क्वालिटीज, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है. जैसे आग में है, पानी में है, हवा में है, आकाश में है, आपके एवरी मैटर में है, हर मैटर में कोई ना कोई एट्रीब्यूट या क्वालिटीज होती है, वो ईश्वर में नहीं है. क्या ये सच है? दोबारा श्वेताश्वेत उपनिषद का कोट किया स्वामी जी ने, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च. द ग्रेट इटर्नल स्पिरिट अंडरगोज नो मॉडिफिकेशंस, उसके अंदर उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होता है. कार्य का मतलब होता है मॉडिफिकेशंस. मिट्टी का जो कार्य है वो घड़ा होता है, और घड़ा का जो काज है वो मिट्टी है. ईश्वर इस तरह मॉडिफाई नहीं होता है. उसका कोई, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, लोहे से आप दरवाजे से लेकर 50 चीजें बनाते हैं, ऐसा ईश्वर से कुछ बनता नहीं है. ईश्वर किसी भी चीज का मैटेरियल कॉज नहीं है. इट डजंट रिक्वायर नो इंस्ट्रूमेंट्स टू वर्क विथ, हैज नो इक्वल नॉर एनी सुपीरियर, ही इज द सुप्रीमली पावरफुल बींग, एंडोइड विथ इननेट ओमनीसिएंस, ओमनीप्रेजेंस एंड इन्फिनिट एक्टिविटी. मंत्र का अर्थ है कि ईश्वर किसी का ना कार्य है ना कारण है. वो हिंदी वाला कार्य कारण नहीं है. यहां कार्य मतलब इफेक्ट, कारण मतलब काज. दुनिया में जो कुछ वस्तु आप देखते हैं, वस्तु मतलब आप भी हैं, मैं भी हूं, कोई भी एक कंप्यूटर है, कुछ भी हो, वो किसी ना किसी का इफेक्ट है, किसी ना किसी का मॉडिफिकेशन है, और किसी ना किसी का काज है, कारण है. अगर कोई चीज है तो वो किसी के द्वारा बना, किसी से बना हुआ है. अगर ये कंप्यूटर है तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं, वो कोई मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर ये घर बना हुआ है तो पत्थर से, ईंट से, सीमेंट से, फोम से, किसी से भी बना हुआ है. अगर हम हैं तो हम, हमारे अंदर फ्लेश है, ब्लड है, बोन है, बहुत सारे चीजों से हम बने हुए हैं. ये हमारे मैटेरियल कॉज है. अगर दुनिया में, और ये जो मैटेरियल कॉज है इसको हम पंचभूत कहते हैं, 5 elements. पृथ्वी मतलब इट्स नॉट अर्थ, इट द सॉलिडनेस. आप जल, जल इज नॉट वाटर, इट्स द लिक्विडनेस, लिक्विडिटी. अग्नि ये फायर नहीं है, जो एनर्जी है. वायु, जरूरी नहीं कि वो एयर हो, कोई भी गैस फॉर्म में चीज हो. ईथर आकाश, जो स्पेस होता है, जो वैक्यूम होता है. इस तरह के जो 5 तत्व हैं संसार में, हर चीज, ये
कोई भी मैटर है उन पांच चीजों से बना है। तो आपके शरीर का जो मेटेरियल कॉज है वो फाइव एलिमेंट्स है। जो आपकी सॉलिडिटी है बॉडी में, आपके फ्लेश है, आपके बॉडी है, वो सारे बिकॉज ऑफ द अर्थ एलिमेंट। जो आपके अंदर लिक्विड है वो बिकॉज ऑफ योर वाटर एलिमेंट। तो जो आपके अंदर एनर्जी है, जो गर्मी है, जो डाइजेशन है, जो जिस तरह की एक्टिविटीज होता है, जिसको आप एनर्जी कहते हैं, एसिड कहते हैं, जो भी कहते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द अग्नि तत्व। जो आप सांसें लेते हैं, आपके शरीर में जो मूवमेंट्स होते हैं, जो प्रेशर्स होते हैं, वो सब वायु तत्व के कारण होता है। और आपके शरीर में भी हजार हजार स्थान पर वैक्यूम है, खालीपन है, या आकाश तत्व है। तो इस तरह के जो पंच तत्वों से आपका शरीर बना है, इसका मतलब वही आपके शरीर के मैटेरियल कॉज है। पर ईश्वर किसी का किसी से बना हुआ नहीं है। ईश्वर का कोई मैटेरियल कॉज नहीं है। इट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एनीथिंग, इट इज नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ एनीथिंग। आप सब मॉडिफाइड हैं किसी ना किसी चीज से, बने हुए हैं। पर ईश्वर किसी से बना नहीं है, इसीलिए वो कार्य नहीं है। इट्स नॉट इफेक्ट ऑफ एनीथिंग, ऑल्सो इट्स नॉट कॉज ऑफ एनीथिंग। ईश्वर से कोई चीज बना नहीं है। जो कुछ बना है वो मैटर से बना है, वो हम उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मतलब जो प्राइमोडियल मैटर है, जो सारे संसार के जो मैटर है उसका जो सबसे अणु तत्व है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। क्यों आप कहेंगे कि ईश्वर से बना नहीं है? क्योंकि कॉज में, मैटेरियल कॉज में जो क्वालिटीज होती हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिस तरह का नेचर होता है, वही नेचर उससे जो मॉडिफाइड चीज होता है उसमें भी होना चाहिए। मान लीजिए आप मिट्टी से कोई चीज बनाएंगे, आप मिट्टी से घड़ा बनाएंगे, तो घड़ा में वही नेचर होगा जो मिट्टी में होता है। मिट्टी बड़ा फुसफुसा होता है, जल्दी एक एक, एक चोट करे तो टूट जाता है, तो घड़ा भी टूट जाएगा। मिट्टी का जो कलर है घड़े का वही कलर होगा। अगर आप लोहे का घड़ा बनाएंगे तो लोहे की क्वालिटीज लोहे के घड़े में मिलेगा। लोहा बड़ा सख्त है, आप चोट लगाएंगे तो आपको हाथ को ही चोट लगेगा, घड़े का कुछ नहीं होगा। लोहा अगर ब्लैक है तो ब्लैक होगा, अगर स्टील है, स्टील से बनाए तो स्टील रंग का होगा। तो जो कॉज में जो क्वालिटीज होती है वही क्वालिटीज उसमें इफेक्ट में दिखना चाहिए। हम ये समझते हैं कि मैटर में जो जो क्वालिटीज है मेरे बॉडी में वही क्वालिटीज दिखते हैं, कंप्यूटर में भी वही क्वालिटीज दिखते हैं। पर ईश्वर में जो क्वालिटी है वो मुझ में ना दिखते हैं, ना मेरे कंप्यूटर में दिखते हैं। ईश्वर में क्या क्वालिटीज है? ईश्वर चेतन है, कॉन्शियसनेस है। तो ये सब कॉन्शियसनेस नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, इट्स ओमनीसिएंट। किसी भी संसार में कोई भी वस्तु ओमनीसिएंट नहीं होता। ईश्वर ओमनीपोटेंट है, उसमें सर्वशक्तित्व है। सभी संसार में किसी भी वस्तु में शक्ति सब में है, पर उसमें ओमनीपोटेंसी नहीं होती है। क्योंकि ईश्वर का कोई भी गुण धर्म किसी भी मैटेरियल चीजों में नहीं दिखता है। इसीलिए यह मानना कि यह ईश्वर का अंश है, इट्स ए पार्ट ऑफ गॉड, इट्स क्रिएटेड द इफेक्ट ऑफ गॉड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि ईश्वर का कोई भी गुण धर्म उसमें नहीं दिखता है। तो इसीलिए ईश्वर संसार में किसी भी वस्तु का ना कारण है न कार्य है। कारण मतलब यहां मैटेरियल कॉज, नॉट एफिशिएंट कॉज। संसार का वो मैटेरियल कॉज नहीं है। और दूसरा, ईश्वर को संसार को बनाने के लिए, अच्छा थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो तो थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आप एक घड़ा बनाते हैं, तो घड़े में दो तरह के कॉज की जरूरत होता है, कारणों की। एक तो मैटर चाहिए जिससे वो घड़ा बने, उसको हम कहते हैं मैटेरियल कॉज, उपादान कारण संस्कृत में बोलते हैं। जैसे घड़ा अगर आप मिट्टी से बनाएंगे तो मिट्टी चाहिए, सोने से बनाना है तो सोना रॉ मैटेरियल चाहिए, लोहे से बनाना है तो लोहा रॉ मैटेरियल चाहिए। ये पर खाली सोना लाकर रख देने से, मिट्टी रख देने से, लोहा रख देने से, तांबे रख देने से घड़ा नहीं बन जाता है। कोई बनाने वाला चाहिए जो एफिशिएंट काज हो, जिसके अंदर वो एफिशिएंसी हो, वो क्वालिटी हो कि वो बना सके। एक इंसान चाहिए या इंसान के द्वारा ऑपरेट किया जाता हुआ एक मशीन चाहिए जो उसको बना सके, पर वो मशीन भी उसको कोई इंसान ऑपरेट कर पाता हो, उसको हम कहते हैं एफिशिएंट कॉज। ईश्वर सारे संसार का निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज है, पर वो मैटेरियल कॉज नहीं है। नंबर टू, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, ना ईश्वर का बराबर कोई है, ना ईश्वर से ज्यादा कोई है, ना ईश्वर से कम कोई है। वो ऐसा नहीं कि कोई डिप्टी ईश्वर है, कोई जॉइंट ईश्वर है, कोई सुप्रीम ईश्वर है, ऐसा कुछ नहीं। इट्स वन एंड ओनली वन, अद्वैत, नो द्वैत, नो सेकेंड। इट्स वन एंड ओनली वन विथ नो सेकेंड। इसलिए कोई झगड़ा नहीं है पॉलिटिक्स के तरह, कब रिटायरमेंट ले तो मैं तो डिप्टी ईश्वर बैठा होगा कि मैं बैठ जाऊं, कि ईश्वर छुट्टी पर गए, स्प्रिंग वैकेशन में घूमने गए हैं दूसरे प्लैनेट में, तो डिप्टी ईश्वर काम संभाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है ना? वो है तो वही है, उसका कोई ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, कोई छोटा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बराबर, कोई छोटा भी नहीं है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, उसकी जो शक्ति है, जो पावर है, जो एनर्जी है, इट्स परा, सुप्रीम, ट्रांसेंडेंट, जिसको हम समझ भी नहीं सकते कितनी बड़ी है। अगर आपको ईश्वर की शक्ति समझनी है तो कभी आप ये यूनिवर्स को समझने की कोशिश करिए, पढ़िए ये यूनिवर्स कैसा है, कितना कैसे बना है, कितना हिस्सा उसका बना हुआ है, कितना हिस्सा उसका अनबना है, अनमेड है, तो आपको समझ में आएगा। और आप अगर वो भी आपको मुश्किल लगे इस संसार को समझने के लिए, आप खुद को समझने की कोशिश करिए, आपका बॉडी कैसा है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे बना हुआ है, नाक कैसे काम करता है, कान कैसे काम करता है, आंखें काम करता है, आपके अंदर के इंस्टिंक्ट कैसे, पूरे बॉडी सिस्टम कैसे काम करता है, समझ में आएगा कि ईश्वर कितना कॉम्प्लिकेटेड काम कर सकता है और उसकी शक्ति कैसी है। और उसकी जो ज्ञान बल क्रिया, वो ट्रांसेंडेंट है, वो हमारे समझ से परे है। हम तो शरीर को भी नहीं समझ पाते। आजकल इतने सब तरह के कैंसर हो चुके हैं, पर अभी तक हम नहीं समझ पाते कि इस कैंसर होने का कारण कहां है। ऐसे सैकड़ों बीमारियां आजकल हमें होते हैं, शुरू से होते आ रहे हैं। बहुत सारे बीमारियों का हमें पता लगा कि इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, पर अभी भी ऐसे सैकड़ों बीमारियां है, हम ढूंढ के थक जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता कि उसका कॉज क्या है। चलो ढूंढ भी लेंगे, फिर नई नई बीमारियां आ जाती हैं। बोले शरीर का फंक्शन ही ठीक से नहीं समझ पाते, तभी तो नहीं समझ में आते हैं कि कैंसर इतने तरह के क्यों होते हैं। कुछ कैंसर पता चला कि नहीं है, लाइफस्टाइल के कारण भी होते हैं कि भाई आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, खान पान हो सकता है हो जाए, पर इतने तरह के कैंसर हो चुके हैं, सैकड़ों तरह के, किसी को नहीं पता वो क्यों होते हैं। मतलब हम इस बॉडी को भी अभी तक ठीक से समझ नहीं पा रहे। बहुत कुछ समझने की बाकी है, हम बहुत कुछ समझ चुके हैं शरीर के बारे में, हमका मतलब जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं शरीर कैसे फंक्शन करता है, कहां से फंक्शन करता है, अभी तक ये नहीं समझ पाते हैं कि ये ब्रेन क्या चीज होता है, ये नर्व सिस्टम कैसे काम करते हैं। ये साइंस का एक न्यू चैप्टर है आजकल, ये नर्व साइंस के ऊपर काम होना शुरू हुआ है, ब्रेन के ऊपर, नर्व्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, ये नया चैप्टर। हो सकता है 15-20 साल के बाद कुछ कुछ ज्ञान आपको समझ में आने लगे, अभी तक तो वैसे ही हाइपोथेटिकली जो कुछ बोलता है। अगर कुछ आपको ज्ञान मिलता है वो सिर्फ हिंदू धर्म के फिलॉसफी में मिलता है, बाकी तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलता इन चीजों के बारे में।
तो इसीलिए वो उसका ज्ञान बल ट्रांसेंडेंट है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उसका बना हुआ मेरा खुद का शरीर ही नहीं समझ पाता हूं मैं क्या समझूं, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान नहीं समझ पाते। उसका बना हुआ ये संसार हम नहीं समझ पाते, फिर उसको कैसे समझे। हैड गॉड बीन डिस्टिट्यूट ऑफ एक्टिविटी, अगर ईश्वर निष्क्रिय होता, ही कुड नेवर क्रिएट द वर्ल्ड, सस्टेन इट एंड डिसॉल्व इट, फिर ये संसार ना बनाता, ना पालता, ना संहार करता। संहार का मतलब है रिड्यूस इट टू इट्स एलिमेंटरी फॉर्म। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये संसार जब हम कहते हैं विनाश होता है, डिसॉल्व होता है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि संसार का प्रलय होता है। आपकी रिलीजियस शब्द में आप क्या बोलते हैं कि ये संसार प्रलय हो जाता है, प्रलय का लिटरेरी मीनिंग क्या है, रिड्यूस इट टू इट्स एलिमेंटरी फॉर्म। ये अपना एग्जिस्टेंस नहीं खोता है, सिर्फ अपनी एलिमेंटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रलय। ही देयरफॉर बीइंग ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट आल्सो पोजेसेस एक्टिविटी। अगला को प्रश्न है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ही एक्ट्स इज दैट एक्शन फाइनाइट और इन्फिनिट। अगर ईश्वर काम करता है तो क्या ईश्वर का काम शांत है, फाइनाइट है, अंत के साथ है, और इन्फिनिट है अर्थात अनंत है, अंत उसका कुछ लिमिटलेस है। आंसर, इन व्हाट्स दैट सो ओवर स्पेस एंड टाइम ही वांट्स टू एक्ट, ही डज इट इन दैट स्पेस एंड टाइम, नीदर लेस नर मोर, बिकॉज ही इज ऑलवाइज। देखिए, उसका काम ना शांत होता है ना अनंत होता है, ना उसका काम फाइनाइट होता है ना इन्फिनिट होती है, जितनी जरूरत है उतना करता है। अगर अंत की कोई ऐसा काम करना है जो फाइनाइट करता है, हम सब फाइनाइट हैं, हम भी उन्हीं के ही कार्य हैं, ये संसार उसी का बना हुआ है, फाइनाइट है। तो जिस चीज को जैसा जितनी जरूरत है वैसे ही बनाता है। देखिए, बाघ का टाइगर का स्ट्रक्चर अलग है, आपका स्ट्रक्चर अलग है, आपका इमोशन अलग है, गाय का इमोशन अलग है, इवन आपका इमोशन अलग है, आपके बच्चे का इमोशन अलग है। जिसको जितना चाहिए, बच्चा पैदा होते ही हंसने लगता है, उटपटांग हरकतें करने लगता है, मेरे प्यारा प्यारा सा लगता है, इसलिए नहीं कि बच्चे ने अपने आप को प्यारा बनाया है। भगवान बच्चे को आप देखिए, वो आपका बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, आपके दुश्मन का भी बच्चा हो, छोटा बच्चे को आप देखते ही आप पिघल जाते हैं, आपके दिल से खुशी छूट पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे प्यारे होते हैं। भगवान ने बच्चों को प्यारे ही बनाया, अगर प्यारे नहीं बनाते तो उनको वो अफेक्शन नहीं मिलता। बहुत सारे मां बाप तो कब से बच्चों को छोड़ चुके होते हैं, अगर बच्चों में वो थोड़ा वो प्यारापन नहीं होता तो। ऐसे भी खोखार मां बाप होते हैं, पर बच्चे को देखते ही आपका दिल पिघल जाता है। तो भगवान ने बच्चे को ऐसे ही बनाया है कि आपका दिल पिघले। वो बच्चे का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब हम बूढ़े बनते हैं तो हमारा शरीर दूसरे टाइप का बनता है, जिससे कि आपको एहसास हो कि संसार मेरा भी ये दशा होने वाली है दूसरों को देख करके, तो इसी हिसाब से थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक करें। जिस समय जिस शरीर को जिस चीज को जितना जरूरत है भगवान ने वैसा ही बनाया। इट्स नॉट अबाउट फाइनाइट और इन्फिनिटी, इट्स अबाउट नीड, क्या जरूरत है। आप कहेंगे शेर और बाघों की क्या जरूरत थी, अगर ये आप 20-50 साल पहले सवाल पूछते तो किसी को समझ में आता कि ये सवाल सच है, कि ये सांपों की क्या जरूरत थी, ये कीड़े मकोड़ों की क्या जरूरत थी, ये घास फूस की क्या जरूरत थी। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं दुनिया में क्लाइमेट बदल रहा है, बहुत सारे पशु पक्षी हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं,
अब हम नया टर्म निकालने लगे, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है अब हमने पूरे सिस्टम को इकोलॉजी नाम देते हैं। इकोलॉजी में वो सब कुछ आ जाता है, आपको स्वस्थ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए, वो जो ओवरऑल वो मैटर हो, कॉन्शियसनेस हो, पेड़ पौधे हो, पानी हो, हवा हो, बारिश हो, आकाश हो, उस सबकी जो जो सिंगुलरिटी है हम उसके इकोलॉजी बोलते हैं। उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट में भी ए पॉइजनियस, वो कैसा भी हो, वो विषाक्त हो या अच्छा हो, मीठा हो, खट्टा हो, सबकी जरूरत है। शायद हमें अभी तक समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आएगा कि इनकी क्या जरूरत थी। समझ में न आने का अर्थ ये नहीं है कि यूजलेस हैं। ईश्वर का बनाया हुआ हर चीज किसी ना किसी कारण से है। जब तक समझ में ना आए तब तक इसको अवॉइड रखना चाहिए, न कि उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि वही अगर वो इतना सर्वज्ञानी नहीं होता, ऑलवाइज नहीं होता, तो आप अपने शरीर को देखकर समझ सकते हैं। आपके नाक से सांस लेते हैं, जब आपको जुकाम हो जाता है तो आपके सब्स्टिट्यूट भी दे रखा है, आप मुंह से सांस ले सकते हैं। आप करके नहीं बना सकते ऐसा ना कि आपका नाक बंद हो जाए तो आप एक नया मुंह खोल देंगे और जिसमें सांस अपने आप चल पड़े, ऐसा नहीं हो पाता है। वो ईश्वर का बनाया हुआ होता है। डज गॉड नो हिज ओन लिमिट्स और नॉट? क्या ईश्वर को खुद की लिमिटेशन पता होता है? देखो लोग अटपटांग सवाल पूछते रहते हैं, पर ठीक है उनका आंसर भी आना चाहिए। हमारे में से भी बहुत ऐसे उटपटांग सवाल सोचते होंगे, पर उसका आंसर भी आना चाहिए। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं। क्वेश्चन है कि क्या ईश्वर को खुद का लिमिटेशन पता है? द सुप्रीम स्पिरिट इज ऑल नॉलेज, मतलब सर्वज्ञ। व्हाट इज, जब आप कहते हैं वो सर्वज्ञ है, मैं जानता हूं, वो जानता है, वो जानने का क्या परिभाषा क्या है, उसका लक्षण क्या है जानने का, उसका हाउ कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इज नॉलेज? तो वो नॉलेज का डेफिनेशन बता रहे हैं। बट द कॉग्नाइजेंस ऑफ थिंग जस्ट एज दे आर। नॉलेज का मतलब होता है जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही जानना, जैसा है वैसा जानना ज्ञान है। ऐसा नहीं कि जैसा मेरे आंख ने दिखाया वैसा जानना नहीं है। अगर आप भूत प्रेत मानते हैं और अंधेरे रात को आप जा रहे हैं और एक पेड़ देखा, खूंटा पेड़ जिसमें पत्ते पौधे नहीं है, तो आप भूत बस सोच के डरोगे, तो आप कहोगे भूत है। ऐसा आपने आंखों ने देखा क्योंकि आपका माइंड सेट इस तरह का है, पर वो रियल, वो नॉलेज नहीं है। ज्यादातर जिसको हम नॉलेज बोलते हैं वो हमारा खुद के माइंड का रिफ्लेक्शन होता है। एक्चुअली कुछ दूसरी घटना होती है, पर हम ऐसा परसीव करते हैं। तो ज्यादातर जिसको हम नॉलेज कहते हैं वो हमारा अपना माइंड का रिफ्लेक्शन होता है। हम जैसा माइंड लेकर बैठे हैं हमें चीजें वैसे ही दिखता है, वैसे सुनाई देता है, वैसे दिखाई देता है, वैसे सुनने देता है। पर जरूरी नहीं कि रियलिटी ऐसी हो। पर ज्ञान का डेफिनेशन है वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में जानना ज्ञान है। गॉड इज इन्फिनिट, therefore हिज नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ एज इन्फिनिट इज ट्रू नॉलेज। अगर ईश्वर अनंत है तो उसको अनंत ही जानना, यही सच ज्ञान है। द रिवर्स इज इग्नोरेंस नेचुरली। अगर आप उसका उल्टा समझ रहे हैं तो ईश्वर को इग्नोरेंस होगा। टू कंसीव ए थिंग एज इन्फिनिट व्हेन इट इज रियली फाइनाइट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड इग्नोर। तो नॉलेज का अपोजिट क्या है? इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस का डेफिनेशन क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ना जानना। तो इसीलिए ये सवाल कोई मतलब नहीं कि ईश्वर खुद की लिमिटेशन जानता है कि नहीं जानता, क्योंकि वो लिमिटलेस है, इसीलिए उसका ज्ञान उसके बारे में लिमिटलेस है, और इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का डेफिनेशन है क्या, यथार्थ दर्शनम ज्ञानमिति, द कंसेप्शन ऑफ नेचर एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टर ऑफ थिंग्स एज दे आर इज कॉल्ड, इट्स नॉट ट्रू नॉलेज, इट्स नॉलेज। नॉलेज का यही डेफिनेशन है। ट्रू नॉलेज आजकल इसीलिए बोलना लगाना पड़ता है क्योंकि जनरली हम जिसको नॉलेज की दावा करते हैं वो ट्रू नहीं होता है, वो हमारे द्वारा ऐसा अज्यूम किया हुआ होता है कि यही सच है। हजारों सालों तक लोग सोचते थे कि सूर्य चलता है, धरती स्थिर है, तो हम दावा करते थे कि ये ज्ञान है, इट्स नॉलेज, द सन इज मूविंग एंड अर्थ इज स्टेडी, और सन जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हजारों सालों तक हमने दावा किया, बहुत सारे रिलीजियस ग्रंथों में भी इसको लिखा गया, और उस तरह के नॉलेज का रिजल्ट क्या होता है, जब हम अपने अजम्पशन को, अपने अपनी जो माइंड के रिफ्लेक्शन को जब हम नॉलेज समझते हैं, क्या होता है, तो हमारे अंदर वो रिजिडिटी आती है, हम दूसरों को सुनने को ना मानने को तैयार नहीं होते हैं, और उसका परिणाम हुआ वेस्टर्न सोसाइटी में बड़े बड़े जो नए नए 15th सेंचुरी में जो नए नए साइंटिस्ट आए, नई नई चीजें दुनिया के बारे में बताया, उनको बहुत तकलीफें हुई, उनको पनिशमेंट मिला, उनको जेल में डाला गया, उनको जहर खिलाया गया, वगैरह वगैरह किया गया। क्यों? उन्होंने सही ज्ञान दिया, सही ज्ञान मतलब जो जैसा है वैसा बताया, पर जैसा दिखता है उसी को नॉलेज नहीं माना। यह समझने की जरूरत है, जो हम जान, जो हमारे आंखों से कानों से दिखता है, जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान है, वो सच है। इसीलिए सच को ढूंढना पड़ता है, सच को खोजना पड़ता है, सच के लिए परिश्रम। इवन आपके घर में झगड़ा है या बाजार में झगड़ा है, और आप उसको समाधान करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपने देखा आप उसको मान लेते हैं। तो अगर आप सचमुच जस्टिस करना चाहते हैं तो आपको होलिस्टिक वे में पूरा समझना पड़ता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, आपके देखने से पहले बैकग्राउंड क्या बना हुआ था, तब जब आप जस्टिस करते तो सही होता है। इसीलिए वीकनेस के आधार पर हमेशा डिसीजन नहीं होता है, सिचुएशन देखा जाता है, बहुत कुछ इंटेंशन देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि तभी सही ज्ञान सामने आता है। जो वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में जानना ज्ञान है, उसके अपोजिट अज्ञान है। इसीलिए योग दर्शन में ईश्वर की एक डेफिनेशन है। वैसे तो हमारे जो 6 स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं, 6 अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, उनमें ईश्वर की अलग अलग तरीके से ईश्वर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, पर पतंजलि के योग दर्शन में भी ईश्वर की एक डेफिनेशन मिलता है, जिसको स्वामी जी कोट करते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वो पुरुष, वो कॉन्शियसनेस, वो सोल या स्पिरिट ईश्वर है, हु इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस पेन ग्रीफ एंड एक्सेट्रा, हु इज फ्री फ्रॉम डिजायर फॉर ऑल द डीड्स विच आर प्रोडक्टिव ऑफ रिजल्ट्स that are good or bad, pleasant and unpleasant, are of a mixed character, and who is distinct from and superior to all souls is called God. आत्मा और परमात्मा में, मेरे और परमात्मा में जो अंतर है, मेरे अंदर भी एक आत्मा है और परमात्मा परम आत्मा है, the supreme spirit or supreme soul, it's soul. Difference क्या है, ये जो soul है वो क्लेशों से, अज्ञान से, ignorance से,
और ईगो से, बहुत सारी चीजों से भरा हुआ होता है, वो सुख दुख से, सुख दुख से भरा हुआ होता है, काम करता है। और कामों के तीन तरह के रिजल्ट आते हैं, अच्छा काम, अच्छा फल, बुरा फल और अब न्यूट्रल फल। न्यूट्रल फल मतलब ग्रे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे पीरियड, जिसमें कोई आपको फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। आप खाना खाते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, उसका कोई आपको रिजल्ट थोड़े मिलता, अच्छा रिजल्ट बुरा रिजल्ट थोड़े मिलता। हाँ, आप नहीं करेंगे तो, आप प्रॉपर नहीं सोएंगे तो बुरा रिजल्ट होगा। सोने से कोई आपको अच्छा रिजल्ट थोड़े मिलेगा, सोने पर आप जैसा है वैसे ही बने रहेंगे। अगर टाइम पर आप प्रॉपर सोते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, तो आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप जैसा होना चाहिए आप वैसा हो जाएंगे। यू विल अचीव नथिंग फ्रॉम दैट, बट यू विल बी वट यू हैव टू बी, यू शुड बी। जैसे आपको होना चाहिए आप वैसा हो जाएंगे, कुछ अधिक अचीव नहीं होगा। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे जैसा आपको होना चाहिए, उसे घटते जाएंगे। अपने अपने कर्म, जब आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। परमात्मा इस तरह के फल देने वाले कर्मों से, सुखों से, दुखों से जो आत्मा अलग है, कर्म फल भोग से जो अलग है, जो सभी आत्माओं की आत्मा है, जो जो सबका सोर्स है, वही परमात्मा परमेश्वर है। यही इस बात को विराम देते हैं। अगले चर्चा हम अगली बार करेंगे, यहीं पर इसी को विराम देते हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति।